इनाया की आंखों में गुस्सा और चेहरे पर अफसोस साफ दिख रहा था। जो भी होगा, आज नहीं तो कल उसे सामने आना ही होगा। ये सब करके भी उसे कुछ हासिल नहीं होगा। इनाया ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, अपने ही ख्यालों में खोई रही। मानव के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। शाम के 6:30 बजे का वक्त था, सूरज डूबने को था और हॉस्पिटल के बाहर की हवा में ठंडक खुलने लगी थी। सुबह से लगातार होती बारिश का असर था कि हल्की हल्की सर्दी की लहरें चल रही थी, जो इनाया के चेहरे पर लग रही कांपती सांसों को और तेज कर रही थी। मानव अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, ड्रग्स का असर खत्म हो गया था, पैरालिसिस का नामोनिशान न था। वो अपने पैरों पर चल सकता था, बस हल्का सा सहारा लेना पड़ता था। डॉक्टर ने डिस्चार्ज देते हुए कहा था, दवाइयां अभी 1 महीने और चलेंगी, फिजियो भी जारी रखें, लेकिन अब घर जाकर आराम करो। मानव हॉस्पिटल के गार्डन में लगी चेयर पर बैठा हुआ था और इनाया उसके पास खड़ी थी। अनीता जी वॉशरूम गई हुई थी। एना, क्या सोचा है तुमने, यहां से अब कहां जाएंगे? इनाया अपने ही ख्यालों में गुम थी। मानव का सवाल कानों में पड़ा, तब जाकर सेंसेस में लौटी। उसका चेहरा भावहीन था। मुझे नहीं पता, लेकिन यहां तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम अभी और इसी वक्त ये शहर छोड़ देंगे। यहां से कहीं दूर, बहुत दूर चले जाएंगे, जहां कोई भी हमें ढूंढ ना सके। और उसके बाद क्या करेंगे? जीजू यहां है, नित्या यहां है, कितने वक्त तक हम उनसे दूर रहेंगे? कब तक उन गुंडों से डरकर छुपते और भागते रहेंगे? तब तक जब तक कायरव वापस नहीं आ जाते। अभी हमारा यहां रुकना सेफ नहीं है। इन सबके पीछे जो भी है, वो यही चाहता है कि मैं कायरव की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊं। अगर तुम्हारी जिंदगी की यही कीमत है तो मैं चली जाऊंगी कायरव से दूर, लेकिन वो ज्यादा वक्त तक मुझसे दूर नहीं रहेगा। अब तक तो शायद उसके पास मेरे गायब होने की खबर पहुंच भी गई होगी, शायद वो मुझे ढूंढ भी रहा हो। मैं बस अभी के लिए इतना चाहती हूं कि दोबारा हम उन गुंडों के हाथ न लगे। कायरव हम तक पहुंचे, तब तक मुझे खुद हम सबको प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद तो वो खुद सब संभाल लेगा, और उसके आने के बाद कोई कितना ही कुछ भी कर ले, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ गएगा। जीजू तो यहां है ही नहीं, उस रात जो हुआ उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते होंगे। तुम्हारे गायब होने की खबर उन तक पहुंच गई होगी, लेकिन अगर उसके साथ उनके पास वो डिवोर्स पेपर्स और वो फोटोग्राफ्स भी पहुंच चुके होंगे। इतने वक्त में तुमने एक बार भी उनसे बात नहीं की है, उन्हें ये तक नहीं पता कि हम कहां और किस हालत में हैं। तुम्हारी सारी बातें सच हैं, लेकिन मुझे कायरव पर पूरा विश्वास है, वो हमें ढूंढ लेगा। इसलिए मुझे बस उसके आने तक खुद को और तुम्हें सेफ रखना है, और अभी कायरव से दूर रहना है। पिछले बार तो उन गुंडों ने हमें जिंदा छोड़ दिया, लेकिन उनकी नज़र है हम पर, और जब तक हम उनकी नज़रों में हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे उन्हें कोई शक हो और दोबारा तुम्हारी जान खतरे में पड़ी। इसलिए अभी हमारा यहां से जाना बहुत ज़रूरी है। आगे क्या करना है ये बाद में सोचूंगी, फिलहाल के लिए हमें बस किसी भी तरह यहां से निकलना है। बीते 1-1.5 महीने में जो हुआ उसकी वजह से इनाया काफ़ी डर गई थी। मानव की जो हालत थी यही वजह थी कि वो सेफ्टी को सबसे ऊपर रख रही थी। मानव भी ये बात समझ रहा था, इसलिए उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर में अनीता जी भी आ गईं, उन्होंने मानव को सहारा दिया। वहीं इनाया बैग्स कैरी कर रही थी। तीनों हॉस्पिटल के मेन गेट से बाहर निकले। अनीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवा का लाख लाख शुक्र, आखिरकार मनु घर लौट रहा है। घर नहीं काकी, हम यहां से घर नहीं जाएंगे, इनाया ने जैसे ही कहा, अनीता जी की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो चौंक सी गई और हैरानगी से उसे देखने लगी। हाँ काकी, मैंने बताया था ना आपको, वो गुंडे अब भी हमारे पीछे हैं, इसलिए हम घर नहीं जा सकते। अगर वो गुंडे सच में हमारे पीछे हैं, उनकी हम पर नजर है, फिर तो हम जहां भी जाएंगे वो हमारे पीछे पीछे वहां पहुंच ही जाएंगे, मानव ने गंभीरता से कहा। इनाया चलते चलते रुक गई। उसके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं और भौहें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं। एक काम करते हैं, यहां से पहले घर चलते हैं, उसके बाद आराम से बैठकर सोचेंगे कि कहां जाना है। वैसे भी अभी हमारे पास ना पैसे हैं और ना ही रहने का कोई दूसरा ठिकाना। शाम भी हो गई है, घर चलते हैं, रात वहां गुजारते हैं, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ कहीं और चले जाएंगे। मनु सही कह रहा है, अभी हमें घर चलना चाहिए, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, मौसम भी आज खराब है। अनीता जी भी मानव की तरफ थी, लेकिन पता नहीं क्यों इनाया को ये सही नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है? क्या सच में इस वक्त हमारा मनु के घर जाना सही होगा? उस गुंडे ने तो हमें यहाँ से बहुत दूर जाने कहा था। मनु से जैसा मेरा रिलेशन दिखाया गया है, शायद उसके घर जाना सही फैसला नहीं होगा, लेकिन इस वक्त हमारे पास वहां जाने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर सच में उन गुंडों की नज़र हम पर हुई तो हम अभी जहां भी जाएंगे उन्हें खबर हो जाएगी। अगर हमें उनकी नज़र से बचकर निकलना है तो हमें रात को जाना होगा। इनाया ने बहुत सोचने के बाद सहमति में सर हिला दिया, लेकिन अभी भी उसे अजीब सा फील हो रहा था। उसका दिल पता नहीं क्यों, लेकिन वहां जाने के लिए मान नहीं रहा था, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। इनाया ने हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए कार्ड वही डस्टबिन में फेंक दिया। बातें करते हुए तीनों हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गए। आप दोनों यहीं रुकिए, मैं टैक्सी बुलाकर लाती हूँ। इनाया ने सामान वही किनारे पर रखा और दोनों को वहीं रुकने के लिए कहकर सामने चौराहे की तरफ चली गई। वहां कुछ टैक्सी खड़ी थी। वैसे तो वो कैब बुक करना चाहती थी, लेकिन मानव और उसके पास फोन नहीं थे और अनीता जी का फोन बीते दिन पानी में गिरकर खराब हो गया था। मानव अनीता जी के साथ खड़ा नित्या के बारे में सोच रहा था। डेढ़ महीना बीत गया था लेकिन नित्या से उसकी एक बार भी बात नहीं हुई थी। पहले उसकी हालत ठीक नहीं थी, उसके बाद हालात देखते हुए उसने खुद ने नहीं किया। अचानक ही मानव का ध्यान इनाया पर गया, जिसका ध्यान सामने था और एक कार उसके पीछे थी। उसकी स्पीड कम थी, जैसे जानकर इनाया के पीछे पीछे चल रही थी। कार इनाया के पास पहुंची और उसके पीछे का डोर खुल गया। मानव की आंखों की पुतलियां डर से फैल गईं। ऐना, पीछे हटो, मानव पूरी जान लगाकर चीखा। दूर होने के बावजूद आवाज इनाया के कानों तक पहुंच गई। वो उनके तरफ पलटी ही थी कि उस कार से एक मास्क मैन निकला और इनाया के मुंह को अपने हाथ से बंद करते हुए उसे कार के अंदर खींच लिया। पीछे खड़े मानव को देखा और अजीब तरह से मुस्कुराया। जब तक मानव उसकी इस मुस्कुराहट की वजह समझ पाता या इनाया को बचाने के लिए आगे बढ़ता, एक तेज रफ्तार ब्लैक एसयूवी उनके सामने आकर रुकी। उसके अंदर से तीन मास्क मैन निकले और जबरदस्ती उन दोनों को गाड़ी के अंदर धकेल दिया। मानव ने चिल्लाने की, अनीता जी को बचाने की, उसने लड़ने की कोशिश की, लेकिन अभी वो कमजोर था। उन आदमियों ने बहुत आसान से उसे काबू कर लिया और दोनों के हाथ पैर और मुंह बांधकर उन्हें पटक दिया। अनीता जी ने सुना था, लेकिन उनकी अब तक की जिंदगी में पहली बार उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था, इसलिए वो डर गईं और मानव कुछ देर छटपटाने के बाद शांत हो गया। इधर अनीता जी और मानव को लेकर वो एसयूवी जैसे वहां आई थी वैसे ही तेजी से नजरों के सामने से गायब हो गई। जिस गाड़ी में इनाया को खींचा गया वो भी उसके पीछे चली गई। पहली गाड़ी में मानव और अनीता जी दोनों बेहोश हो चुके थे। उन्हें कोई इंजेक्शन लगाया गया था जिसके बाद दोनों कुछ ही देर में बेहोश हो गए।
पीछे वाली गाड़ी में इनाया बुरी तरह छटपटा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ मुंह में घुट कर रह गई। उस मूछों वाले आदमी ने उसके मुंह को इतनी तेज बंद किया था कि उसके नाखून इनाया के गाल पर चुभ रहे थे। दूसरे आदमी ने इनाया के हाथ को जबरदस्ती पकड़ा और कुछ ही सेकंड बाद इनाया को चुभन का एहसास हुआ। थोड़ी देर वो छटपटाती रही, फिर धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगी और शरीर शांत होता चला गया। To be continued.